ओम शांति। हम सभी के समक्ष आदरणीय सुषमा दीदी जी उपस्थित हैं। एक हाथ की ताली से हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी जी, आप बचपन से ही बहुत कम उम्र में ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। आप लौकिक रीति से भी बहुत मेधावी छात्र रही हैं। आप हिमाचल से हैं और पंजाब से आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर 71 में ही समर्पित रूप से सेवाएं देना आरंभ किए हैं। 55 वर्षों से आप समर्पित सेवाएं दे रही हैं। आप वर्तमान समय जयपुर सबजोन प्रभारी का कार्यभार संभाल रहे हैं। आपके निर्देशन में अनेक सेवाएं बहुत सुंदर रीति से संचालन हुई हैं। आप वर्तमान समय बिजनेस विंग के भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। प्रारंभ में आपके प्रेरणाओं से यूरोपियन कंट्रीज में भी सेवाओं का शुभारंभ हुआ। आप साथ ही कई सारे अनेक विंग्स के सेवाओं के लिए भी सुंदर कोर्सेज का निर्माण किए हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन विंग, मेडिकल विंग, सोशल विंग, मीडिया विंग, वुमेन्स विंग इत्यादि। साथ ही आप बहुत सुंदर रीति से रमणीकता से ज्ञान को प्रस्तुत करने की आप में विशेष कला है। आप वर्तमान समय जयपुर में स्थित होकर अपनी बहुत मूल्यवान सेवाएं दे रहे हैं और अनेकों सेंटरों का निर्माण करने की आप विशेष सेवाएं दे रहे हैं। तो आज आपसे हम सुनेंगे, बहुत ही सुंदर विषय है, परिवर्तन का आधार महसूसता की शक्ति। आदरणीय सुषमा दीदी।
ओम शांति। मधुबन ईश्वरीय भूमि, तपस्या की भूमि, वरदानों की भूमि, मन इच्छित फल पाने वाली यह भूमि है। लेकिन क्या हमारा ये विश्वास है, जैसे कि विषय है महसूसता की शक्ति से परिवर्तन, क्या हमें ये महसूस होता है कि ये वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, प्रभु मिलन की भूमि है, स्वयं में दिव्यता भरने की भूमि है, दिव्य श्रृंगार करने की भूमि है? क्या हमें ऐसा लगता है? अगर हमें ये महसूस हो जाए कि सचमुच ये भूमि इतनी महान है, जैसे किसान होता है, वो जहाँ खेती करता है उस मिट्टी की उसको परख होती है कि इस मिट्टी में क्या बोया जा सकता है। सब जगह सब कुछ नहीं बोया जा सकता। कहीं किसी इलाके में आप किसी देश के कोने में आप देखेंगे, पंजाब आदि में जाएं, तो वहाँ गेहूं मक्की बहुत है। और अगर आप शायद सब ईस्टर्न जोन वाले बैठे हैं, अगर बंगाल बिहार में जाएं तो शायद वहाँ चावल अधिक होगा, ऐसा है ना? हर एक जगह की मिट्टी की अपनी अपनी विशेषता है। और बोने वाला उसको परखता है, किस चीज को बोने के लिए, केवल मिट्टी नहीं, चावल बोएगा तो उसको मालूम है चावल के लिए पानी कितना चाहिए, गेहूं और मक्की के लिए इतना पानी नहीं चाहिए जितना चावल के लिए चाहिए। तो अगर हमें भी ये पहचान हो जाए कि ये जो भूमि है जहां हम आए हैं, ये वरदानी भूमि है, इसके कण कण में वरदान, खुशी, तपस्या, ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन भरे हुए हैं। आप महसूस भी करते होंगे, बाबा के कमरे में चले जाओ, कितना बड़ा बाबा का कमरा है। तपस्या धाम में चले जाओ, कभी भी जाकर बैठ जाओ, और भी कई स्थानों पर छोटे छोटे बाबा के कमरे बने हुए। आप जहां रहते होंगे, जिस बिल्डिंग में, वहां भी कोई ना कोई बाबा का कमरा बना हुआ होगा। आप किसी भी समय बैठते हो, चाहे सवेरे, दोपहर, शाम, रात, लेकिन आप देखते होंगे कोई ना कोई बाबा के कमरे में है ही है। यहां हर घड़ी तपस्या चल ही रही है। तो ये तपस्या की भूमि, साधना की भूमि, आत्मिक उन्नति, आत्मिक शांति की भूमि, सचमुच ये भूमि ऐसी महान है। यूं तो चाहे साकार में जब बाबा थे, ब्रह्मा बाबा तो माउंट आबू में रहे, पांडव भवन में। आप सबने भी वो पांडव भवन देखा होगा, नहीं तो कल परसों में देखेंगे, जहां बाबा और बाबा के बच्चे रहे और कितना समय तक सबने मिलकर तपस्या की। ये स्थापना का कार्य बाबा ने कैसे कैसे किया। बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा के कार्य का विस्तार हुआ, काफी समय तक ऊपर कार्य चलता रहा। विस्तार के साथ साथ वही बाबा के बच्चे ऊपर से नीचे तक आ गए, ताकि अधिक से अधिक भाई बहनें आ सकें, रह सकें। हमें याद है, एक बार मधुबन में, साल तो मुझे याद नहीं, दादी प्रकाशमणि जी होते थे, तो दादी जी ने थोड़ी सी बहनों को बुलाकर एक छोटी सी मीटिंग की, और दादी ने कहा कि इतने सब भाई बहनें अभी मधुबन में आते हैं और आना चाहते हैं, लेकिन रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो दादी कैसे सबको परमिशन दे। क्योंकि एक समय ऐसा था जब पुरानों के आने पर थोड़ी रोक लगाई, और जो नए नए भाई बहने आ रहे हैं वो आए, बाबा से मिले, उनको चांस मिले। तो जो पुराने थे वो कहने लगे कि दादी ये क्या, हम तो हमेशा बाबा के यहाँ साकार में भी आए और बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी, अब एक दो साल ऐसा हुआ जो दादी जी ने कहा अच्छा जो दो साल से हैं, पांच साल से हैं वो लोग आए, और जो पुराने थे वो तो 20-20, 30-30 साल वाले थे। दादी जी को बहुत संकल्प चला कि ये बाबा के बच्चे कैसे बाबा को मिलेंगे। फिर मैं भी उस समय दादी जी के साथ थी। फिर उसके बाद मैं समझती हूँ दादी जी को बहुत ही सूक्ष्म कहें, तीव्र संकल्प कि बाबा के बच्चे सब आए, सब बाबा के बच्चे बाबा से मिलन मनाएं। और हमने देखा थोड़े समय के बाद ही नीचे ये शांति वन का निर्माण होना शुरू हो गया। तो वही तपस्या की लहर ऊपर से लेकर नीचे तक आती चली गई। तो अब बात ये समझने की है, शांति वन में भी आप देखो कितने सालों तक अव्यक्त बाबा आते रहे, हम बच्चों से मिलते रहे, और बाबा के बच्चे भी भाग भाग कर बाबा से मिलने आते रहे, बाबा से दृष्टि लेते रहे, बाबा से शक्तियां लेते रहे। तो क्या हमें ये अब महसूस होता है कि ये तपस्या भूमि, ये शक्तियों से संपन्न भूमि, ये रूहानियत से भरपूर भूमि हमारे में भी ये शक्तियां भर रही है। जैसे आप स्थूल रूप में देखिए, मान लीजिए आपने अभी अभी चाय पी है, चाहे वो मीठी या फीकी कोई भी आपने पी अपनी अपने टेस्ट अनुसार, और अब चाय आपने अभी फिनिश की और कोई आपको कहता अरे पकौड़ा बहुत अच्छा बना है, आप खाएंगे? खाएंगे? कहेंगे नहीं नहीं, अभी तो चाय पी, अभी मेरा टेस्ट ना चाय वाला है, बहुत अच्छा। चाहे आप कितने भी शौकीन क्यों ना हो पकौड़ा खाने के, वो कहेगा अरे दोबारा चाय पिला देंगे, कहेगा नहीं अभी पी ली ना, पहले देते तो मैं जरूर खा लेता, अभी नहीं। आपने गरम गरम चाय पी है, उसके बाद आपको कोई मीठा दे, नमकीन दे, आप कभी नहीं खाएंगे। कोई भी चीज हो, आपने फल खाया है, आपने मिठाई खाई है, उसके बाद आपको कुछ और ऑफर किया जा रहा है, आप कहेंगे नहीं अभी मेरे मुंह का टेस्ट बहुत बढ़िया है, आज मैंने अपनी चॉइस की चीज खाई है, अब मैं ये नहीं खाऊं। तो महसूस करते हैं ना, या आपको टेस्ट दिखाई देता है, मीठा था, कड़वा था, खट्टा था, नमकीन था, आपको दिखाई दिया क्या टेस्ट? किस किस को दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप कहते हैं मेरे मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा है, आज तो ये चाय बनाने वाले ने इतनी बढ़िया चाय बनाई, एकदम एक्यूरेट मेरे टेस्ट की थी। तो हम इस संसार में जो भी वस्तु चाहे स्थूल रूप में प्रयोग में लाते हैं, चाहे स्थूल रूप में उसको स्वीकार करते हैं, खाते हैं, चाहे स्थूल रूप में हम अपना श्रृंगार करते हैं, आप चाहे कितने भी अच्छे टेढ़े मेढ़े बाल अपने बना लेते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे ये स्टाइल नहीं, ये स्टाइल अच्छा लगता है, वो अच्छा क्या चीज है? दिखाई देता है क्या अच्छा? आपने कोई कलर्ड कपड़े पहने हैं, कलर्ड साड़ी पहनी है, कलर्ड शर्ट पहनी है, कहते हैं ये मेरा बहुत पसंद, मेरा फेवरेट कलर है, अब वो कलर में आपको क्या दिखाई दिया? बाबा के घर में आते हैं व्हाइट पहनते हैं, कहते बहुत अच्छा लगता है, क्या इसमें क्या अच्छा लग रहा है? व्हाइट तो व्हाइट ही है। हाँ फिर कहते हैं गंदा भी बड़ी जल्दी हो जाता है। फिर कोई सोचता है मुझे तो कॉटन ही अच्छा लगता है, कोई कहता है नहीं कॉटन तो भाई मेंटेन नहीं कर सकते हैं, हमें तो ये दूसरे 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 कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो क्या चीज अच्छी लग रही है? चाय टेस्ट की, पकौड़ा खाया, हलवा खाया, कपड़ा पहना, श्रृंगार किया, सोने चांदी का कुछ आपने जेवर पहना, तो आपको क्या चीज अच्छी लग रही है? क्या चीज है बताइए, कोई बता सकते हैं क्या चीज अच्छी लगती है? उसकी जो क्वालिटी है। अब ये जितने भी आप शब्द सुन रहे हैं, वो क्वालिटी, टेस्ट, ब्यूटी, ये कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है, ये दिखाई नहीं देती। बाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है, वो स्टाइल क्या है? कपड़ा पहना है बहुत अच्छा है, वो अच्छा क्या है? कपड़ा तो कपड़ा ही है, कपड़े का पर्पस केवल इस तन को ढकना है, पर अच्छा क्या है? आप धुलाई करने के बाद इसको आयरन करना चाहते हैं, नहीं नहीं ऐसे तो धुला हुआ नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा क्या नहीं लग रहा? क्वालिटी जो है, आपको क्वालिटेटिव चीज चाहिए, खाने की हो, पहनने की हो, श्रृंगार की हो, कोई सिंपल यूज करने की हो, आपको क्या चाहिए? क्वालिटी। तो स्थूल क्वालिटी तो समझ ली ना, ऐसे ही अपने भीतर की क्वालिटी, मेरी आत्मा की क्वालिटी क्या है? हम योग तो लगा रहे हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, लेकिन क्या मैंने इसको महसूस किया? सिर्फ कह दिया चलो दो मिनट योग में बैठे, मैं शिव बाबा की बच्ची हूं, शिव बाबा से शक्तियां ले रही हूं। अब शक्तियां लेते लेते क्या हुआ, मेरे पास मेरा फोन पड़ा है, चाहे मैंने उसको साइलेंस में किया हुआ है पर वो वाइब्रेट कर रहा है। अब शक्तियां बाबा से ले रही हूं, फोन वाइब्रेट कर रहा है, मैं क्या करूंगी बताइए? आप क्या करेंगे, फोन उठाएंगे या शक्तियां लेते रहेंगे? जो कहते हैं फोन उठाएंगे वो हाथ उठाओ। बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, फोन वाइब्रेट कर रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे? फोन उठाएंगे, राइट? शक्तियां ले रहे थे। और मान लीजिए आप अपने मोबाइल में कोई मैसेजेस पढ़ रहे हैं, किसी को मैसेजेस भेज रहे हैं, या कुछ और न्यूज आदि देख रहे हैं, आपको कोई आकर बुलाता भी है, कहता है हेलो हाउ आर यू, अरे बड़े बिजी हो, हम आपके पास खड़े हैं, वो कहता अरे दो मिनट रुक ना, अरे छोड़ कहां तू फोन में लगा हुआ है, फिर मैं जा रहा हूं, कहता अच्छा कल आ जाना। क्योंकि इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट किस में है, फोन में है। लेकिन इससे पहले की बात याद कीजिए, बाबा के आगे बैठी हूं, कोई आया उसने मुझे धीरे से कहा उठ के चल दिए, मुरली सुन रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, फोन की घंटी बजी या वाइब्रेट हुआ, फट से उठ के बाहर भागेंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो यहीं उठा के हाँ हेलो वहीं लग जाएंगे करने। अब आप देख लीजिए मेरी ज्ञान के प्रति सुनने की क्वालिटी, धारण करने की क्वालिटी, समझने की क्वालिटी क्या है। यही कारण है बहुत से भाई बहन बाद में पूछते हैं, बहन जी मैं ना 10 साल से ज्ञान में हूं, रोज अमृत वेले कोशिश भी करते हैं, अमृत वेले उठकर योग लगाएं, पर क्या करें, ज्यादा करके तो बैठते हैं तो ऐसे करते रहते हैं। और वो एक से नहीं पूछते हैं, अपनी ये समस्या मेरे से भी पूछेंगे, कोई दूसरा भाई बहन बहुत अच्छी क्लास कराएंगे या आप जानते हैं उनसे भी यही पूछेंगे, किसी बड़े भाई बहन से मिलने जाते हैं उनसे भी आप यही पूछते हैं, क्या करें, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, बाबा की कितनी मुरलियां हैं, आप व्यर्थ को एकदम त्याग दो, बस अपनी बुद्धि एक ज्योति बिंदी से लगाओ। सबसे अच्छा शब्द है मेरा बाबा, कितनी युक्तियां बाबा ने बताई हैं वो तो हम भूल जाते हैं और इसी में लगे रहते हैं। कारण हमने ये महसूस नहीं किया है कि इससे मेरा फायदा क्या है। जैसे मैं मोबाइल देखने में लगी हूं या किसी से बातें करने में लगी हूं या कोई मैसेज में मेरे को कोई मैसेज देता है, अभी हम मधुबन में बैठे हैं, आपके घर से फोन आ जाता है, कोई बीमार हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, फट से भागेंगे, कहेंगे अरे बाबा तो परसों आएगा पर वहां जाना जरूरी है। प्रेफरेंस, इंटरेस्ट, वैल्यू, इसका अर्थ यह है कि अभी तक मैंने इस बात को महसूस नहीं किया है कि अपने को आत्मा समझना क्यों जरूरी है और भगवान को याद करना क्यों जरूरी है। आप भक्ति में किसी की भी कहानी सुन लीजिए, वो ध्रुव प्रहलाद हो, वो मीरा हो, और भी अनेक भक्त हुए हैं, उनको भगवान की लगन लग गई, दुनिया ने कुछ भी कहा, कितनी भी परीक्षाएं ली। पांडवों को कौरवों ने निकाल दिया, एक इंच भर भी जमीन देने को तैयार नहीं, लेकिन जिसकी जहां जहां लगन है, जहां जहां प्रीत है, वो वहां लगा हुआ है। और उनके हम अनुभव क्या सुनते हैं, मीरा को जहर का प्याला दिया, वो गटगट करके पी गई मगर मरी नहीं। ध्रुव प्रहलाद उसको उसकी बुआ गोद में लेके बैठ गई, क्योंकि उसको वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं, और हुआ क्या, वो शॉल उस बच्चे पर आ जाती है, वो जल जाती है और वो ध्रुव प्रहलाद बच जाता है। और हमारा क्या हाल है, सचमुच मुझे अंदर में ये निश्चय है, ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरा बाबा है, महसूस कीजिए। बहुत से भाई बहन यही पूछते रहते हैं, कहते बहन जी मैं 5 साल 10 साल 20 साल से आ तो रहा हूं, लेकिन ना पहले भी मैं हनुमान जी की भक्ति करता था, काली की भक्ति करता था, राम की भक्ति करता था, मैंने ज्ञान में आकर पहले बीच में छोड़ा तो हमारे घर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सबने कहा देखा तुमने भक्ति छोड़ी है इसलिए हुआ है। तो मैं मुरली तो रोज जरूर सुनता हूँ, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं जाकर मंदिर में घंटी भी बजा लेता हूँ। अब निश्चय कहाँ है, प्रीत कहाँ है, ना उधर है ना उधर है, बीच में बेचारा लटक रहा है, उसको प्राप्ति क्या होगी। तो ये जो बात है महसूसता की शक्ति, परिवर्तन की बात छोड़िए, परिवर्तन तो बहुत ऊंची बात है, जब तक मुझे ये महसूसता नहीं है, ये रियलाइजेशन नहीं है कि मुझे कितना ऊंचा ज्ञान मिला है और ज्ञान देने वाला कौन है, पूछो अपने मन से, गहराई से पूछिए कौन दे रहा है। ऐसे नहीं ये बहन जी तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाती हैं, एक शहर में 2-4 सेंटर होंगे, कहेंगे नहीं ये सेंटर की बहन जी बहुत अच्छा, हम तो यहीं जाते हैं क्लास करने, हालांकि दूर पड़ता है तो भी हम तो वहीं जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ज्ञान समझ आ रहा है, वास्तविकता सत्यता उसका अनुभव हो रहा है। अगर मुझे वास्तविकता का अनुभव होगा, सत्यता का अनुभव होगा, कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, मुझे तो बाबा के महावाक्यों का रस लेना है। योग की बात तो छोड़िए, सवेरे मुरली चलती है, चाहे यहां आते हैं चाहे सेंटर्स पर आते हैं, बहुत से भाई बहन शुरू शुरू में तो मुरली सुनेंगे बहुत अच्छा, झूमेंगे भी, पॉइंट भी नोट करेंगे, फिर थोड़ी सी मुरली सुन लेंगे, आधी मुरली पूरी हो जाएगी, फिर वो डायरी पेन ऐसे और ऐसे, वो हाथ भी पता नहीं कहां चला जाता है। इसका मतलब ये है, मैंने अभी तक ये रियलाइज, ये महसूस नहीं किया है कि इस ज्ञान से प्राप्ति क्या होने वाली है। किसी के घर में कोई कष्ट हो, कोई बीमार हो, पैसे की कमी हो, और कोई पंडित जी कह दें आप ये मंत्र जाप 3 महीने कीजिए, आपके यहां धन की वर्षा होगी, आपका रोग खत्म हो जाएगा, आप देखिए वो भक्त करता है या नहीं करता है। उसको कहा तेरे को 50 माला फेरनी है, वो 50 माला फेरता है या नहीं फेरता है, कभी नहीं कहता टाइम नहीं पंडित जी क्या करूं, वो करेगा। हमें बाबा कह रहा है, बच्चे बाबा तुम्हारा कौन है, मात पिता है, साथी है, बंधु सखा है, बच्चे तुम बाप को अपना साथी बनाओ, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हम सारा दिन माया का गाना गाते रहते, क्या करें व्यर्थ चलता है, क्या करें माया आ जाती है, क्या करें परिवार में रहते हैं ना, क्या करें बच्चे ज्ञान में नहीं है, क्या करें पति ज्ञान में नहीं है, क्या करें पत्नी ज्ञान में नहीं है, सारा टाइम क्या क्या क्या। बाबा कहता है ये कहां 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 मत करो, आप अपना मंत्र पक्का कीजिए, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है, बाबा। अब फिर कई पूछेंगे बहन जी ऐसे हम रटें क्या कि बाबा मेरा साथी है? बिल्कुल रटिए, क्योंकि जब तक बुद्धि की तार जुटी नहीं है, जैसे सुई में धागा डालते हैं, तो अब जब तक धागा डला नहीं है तो आप यूं यूं करके अगर कम दिखाई देता है तो यूं आंख के पास भी लाके डालेंगे, तब छोड़ेंगे या सुई या धागा अलग अलग छोड़ देंगे। फिर जब धागा डल जाएगा उसको खींच लेंगे और फिर उससे सिलाई करेंगे। ऐसे ही जब तक मेरे को ये पक्का नहीं हो जाता बाबा मेरा है मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है मैं बाबा का हूं, आप प्रतिदिन घंटा दो घंटा बैठकर यही मंत्र जाप कीजिए, बाबा मेरा है मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है मैं बाबा का हूं। जब आप दो तीन महीने प्रतिदिन दो तीन घंटा ये जाप करेंगे, आप देखिए उसके बाद आपकी बुद्धि कैसे स्थिर हो जाती है। भक्तों की तरह नहीं करना बाबा बाबा बाबा, नहीं, धीरे से कहिए बाबा, महसूस कीजिए मुझे महसूस हो रहा है बाबा, कैसा है बाबा। बाबा कहते हैं बाबा कहने से पहले अपने को आत्मा महसूस कीजिए, मैं आत्मा यहां हूं। अब बाबा ने हमें योग कैसे सिखाया, बच्चे ऐसा सीधा होके बैठो, आंख खुली रखो, अपना ध्यान यहां ले आओ और महसूस करो मैं शुद्ध आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा यहां रहती हूं। अब हम कैसे बैठते हैं योग में, आए बैठे थोड़ी देर तो ऐसे आंख खोल के बैठते हैं, सामने बाबा का चित्र होगा उसको देखेंगे, शिव बाबा का चित्र होगा उसको देखेंगे, और फिर थोड़ा धीरे धीरे ऐसे आंख बंद, बस फिर पता ही नहीं हम कहां घूम रहे हैं। हमें बाबा ने जो योग सिखाया है इसकी विधि है, आप जहां भी हैं चाहे नीचे बैठिए, सोफे पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, एकदम ऐसा सीधा होकर बैठिए, और सीधा होकर बैठकर सोफे वाले कुर्सी वाले तो क्या सोचते हैं, हमें तो सोफा कुर्सी मिला है ना, तो बस ये झूमने के लिए नहीं मिला है, ये सोने के लिए नहीं, ये तो इसलिए चलो किसी के पांव में कष्ट है, टांग में कष्ट है, कमर में है, तो बाबा ने कहा अपने को बच्चे कष्ट नहीं दो, लेकिन कम से कम ऐसा सीधा होके तो बैठो, अलर्ट होकर तो बैठे, फिर आंख खोल के, ऐसे नहीं कुर्सी पर बैठ गए, मुझे तो देखो कितना अच्छा सोफा मिला, अब मैं यहां बैठ गई और आंखें बंद। तो एक एक स्टेप पर देखना है मैं क्या फील कर रही हूं, मेरा योग लग रहा है। बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैंने समझा मैं आत्मा हूं, एक है मुझे मालूम है मैं आत्मा हूं, मुझे ये ज्ञान है आत्मा यहां रहती है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान। पर क्या मुझे ये अनुभूति है मैं आत्मा यहां हूं, मन बुद्धि संस्कार सहित हूं? अपने मन को डायरेक्शन दें, हे मन तू अपने को देख। जब स्वयं को देखने का अभ्यास लंबा हो जाए, फिर हे मन, अब तू शिव बाबा को देख। तो इस चीज का हमको अभ्यास करना है। महसूस तब होगा, महसूसता की शक्ति कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि लो जी मैं आपको शक्ति देती हूं। जैसे अभी ये बिजली है, इसका कितना प्रयोग हो रहा है। लाइट जल रही है, रोशनी है। लाइट है, माइक चल रहा है। कैसे चल रहा है? वो लाइट का करंट इसमें है। मौसम गर्मी का हो गया है, पंखे चल रहे हैं, हवा मिल रही है, हमें थोड़ा अच्छा कूलिंग महसूस हो रही है। अगर ये ना चले, कहेंगे क्या बात है, आज पंखे क्यों नहीं चल रहे, गर्मी बहुत है, तो परेशान हो जाएंगे ना। ऐसे ही हम योग में बैठते हैं, अगर मन की स्थिरता नहीं है, मैं आत्मा यहां हूं, अब मेरे ये स्थिरता है नहीं, मुझे ये अनुभूति हो नहीं रही, तो फिर क्या होगा? जैसे पंखे नहीं चलते हैं तो हम परेशान होते हैं। अगर एक सेकंड के लिए लाइट चली जाए तो पंखे बंद हो जाएं, या कहीं किसी की वायर ढीली हो, तो फिर हम क्या कर, अरे बाबा गर्मी बहुत है, आप देखिए ऐसे करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही जब हमारा मन बुद्धि स्थिर नहीं है, तो फिर हम भी क्या करते हैं, पहले तो बैठे मैं शुद्ध आत्मा यहां हूं, और जैसे ही ये फीलिंग, ये संकल्प हटा, तैसे ही फिर कई पूछते हैं, बहन जी योग में नींद क्यों आती है? इसलिए आती है, दो शब्द हैं, एक है फीलिंग, मैं ये फील करूं आत्मा यहां है, मैं स्वयं को ये स्मृति दिलाऊं मैं शुद्ध आत्मा यहां हूं, बार बार स्मृति दिलाऊं मैं आत्मा यहां हूं। स्मृति के साथ साथ अभ्यास। तो पहला फील करूं मैं आत्मा यहां हूं, तब मुझे रियलाइज होगा, महसूस होगा, हां मैं आत्मा यहां कैसी हूं, एकदम शांत पवित्र आत्मा। तो ये बैठकर हमें अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। तो जो अभ्यास करना होता है, आप देख लीजिए, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे साधु संत तपस्या करने वाला हो, चाहे कोई प्लेयर खेल खेलने वाला, कोई भी गेम खेलने वाला हो, कोई एक्सरसाइज कराने वाला टीचर हो, कोई योगा कराने वाला टीचर हो, आप उनसे पूछिए आप कितना समय तक इस अभ्यास को करते हैं, और जब आपने सीखा तो कितना समय किया। आपके आप भी कई ऐसे लोगों से मिले होंगे, हमारे पास भी कई भाई आते हैं, दो ऐसे कुमार हैं जो प्लेयर भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई कितनी देर अभ्यास करते हो, कहते बहन जी हमें 5 बजे प्ले ग्राउंड में पहुंच जाना होता है, फिर सीधा जाके खेलने नहीं लग जाते हैं, पहले क्या करते हैं, खिलाड़ी होगा एक्सरसाइज करने वाला होगा, पहले अपने आप को वो एक शब्द बोलते हैं, वार्म अप करते हैं, खड़े हो जाएंगे कैसे कैसे वो करते रहेंगे, हाथ पांव यूं चलाएंगे, वार्म अप करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कितनी देर वार्म अप करते हो, बोला 2 से 3 घंटा हमें वार्म अप करवाते हैं। तो माना 5 बजे के 8 बजे तक तो बेचारा वार्म अप ही हो रहा है। फिर उसके बाद उनकी गेम शुरू होती है, 2 घंटा 8 से 10 वो उसका प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं अमृत वेला, चाहे घरों में योग करते हैं चाहे यहां, बस उठे बाथरूम में गए, थोड़ा पानी से यूं यूं पानी डाला, छींटा लगाया, और किसी ने तो हाथ से ही बाल यूं यूं कर लिए, किसी ने थोड़ा कंघा भी लगा लिया, और जाके बाबा के आगे बैठ गया। फिर कहेंगे अमृत वेले योग में बैठते हैं तो नींद आती है, वो तो आएगी, आपने वार्म अप तो किया ही नहीं अपने आप को। आप कहेंगे वार्म अप हम कैसे करें, हम कोई ऐसे एक्सरसाइज करें? आप योग में जाकर बैठते हैं, पहले थोड़ा कोई मुरली पढ़िए, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, मुरली को पढ़िए अच्छी तरह से, चाहे आधी मुरली पढ़िए, लेकिन उसमें से पॉइंट निकालिए, 2 नहीं 3 पॉइंट 4 पॉइंट कुछ तो निकालो। फिर जो पॉइंट आपको टच हुआ है, जो आपने निकाला है, उसका मनन चिंतन कीजिए। बाबा ने इतना ही कहा, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। अब मैं मनन करूं आत्मा क्या है, बाबा कैसे समझे आत्मा? आज मैं यही मनन करती हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा यहां हूं, उसकी मैं प्रैक्टिस करूं। आप देखिए आपको कैसे नींद आएगी, नींद तो कोसों दूर भाग जाएगी। बहुत भाई बहन पूछते हैं, बहन जी बाबा भी कहता है, मन भी बहुत है, कोशिश भी करते हैं, अमृत वेला करें, फिर योग नहीं लगता है, सोचते हैं इससे तो सो लें वो ही अच्छा है। ये बात तो आपकी सही है, अगर योग नहीं लग रहा है तो सोना ज्यादा अच्छा है, कम से कम नींद तो पूरी हो जाए, क्योंकि योग से शक्ति नहीं मिल रही है। लेकिन योग करने से पहले अपने आप को वार्म अप तो कीजिए, मुरली पढ़िए, उसमें से 4-5 पॉइंट कॉपी में लिखिए, फिर उनको मनन करके आप उसका कुछ मनन चिंतन, जैसे बच्चों को कहते हैं ऐसे लिखो, ऐसे आप भी ऐसे लिखो, उसके बाद आप योग में बैठो। तो आपको लगेगा अरे आधे घंटे में तो कुछ भी नहीं, 1.5-2 घंटा आपका बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आप 4 बजे नहीं उठे, 4:30 तो उठिए, 4:30 से 6:30 अच्छी तरह से मनन चिंतन करके और बाबा के सामने बैठिए, बाबा से शक्ति लीजिए। बाबा बुला रहा है, बाबा शक्ति दे रहा है। बाबा कहता है बच्चे सवेरे का समय मेरा है ही बच्चों के लिए। भगवान लुटा रहा है और मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं लूट रही हूं या खुद ही लूट रही हूं? नींद आ गई, आलस आ गया, तो कदम कदम पर हम महसूस करें। कोई भी बात है, बहुत से भाई बहन पूछेंगे, बहन जी मैं 10 साल से हूं पर ना क्या करूं, घर में कुछ होता है, गुस्सा आ जाता है, किसी को टेंशन आ जाता है, किसी को रोना आता है। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बच्चे रोना नहीं है, किसी ने जरा सा कुछ कहा बस देखो टप टप आंसू, जैसे आंसू तो यही है नाक पे धराई हुई है, अब कोई वाटर टैंक चालू प्रोग्राम। तो हम कौन सी बात को मानते हैं, अमृत वेला उठ नहीं पाते, गुस्सा आ जाता है, रोना क्या करें, वैसे मुझे रोना नहीं आता पर कोई कुछ कहता है तो बाबा ने क्या कहा, कोई कुछ कहे तो रो लो, बाबा ने तो कहा ही नहीं है। हमारे पास हर चीज का एक्सक्यूज तैयार है, तो आज सबसे पहले ये महसूस कीजिए कि क्या सचमुच बाबा के दिए हुए ज्ञान और योग को मुझे सीखना है या नहीं। बैठिए अब सब सीधे होकर, जहां भी बैठे हैं, चाहे धरती पर, चाहे सोफे पर, चाहे कुर्सी पर, एकदम सीधा होके बैठो और स्वयं से स्वयं पूछिए कि मैं चाहे एक साल से ज्ञान में हूं, चाहे 10 साल से हूं, 20 साल से हूं, जो मैंने सुना है, जो मैंने समझा है, क्या सचमुच मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है? लाना है तो क्यों लाना है, क्या फायदा है? क्या मुझे निश्चय है? ज्ञान को सुनकर धारण करने से मैं मनुष्य से देवता बन जाऊंगा या बन जाऊंगी? आज पहला निर्णय ये कीजिए। ज्ञान सागर बाबा मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं और मुझ आत्मा को लक्ष्य दिया है मनुष्य से देव बनने का। ओके बाबा, प्रॉमिस, मुझे देवता बनना ही है, मैंने महसूस किया है। ये सत्य है जो शिक्षा आप दे रहे हैं, ये ऊंचे ते ऊंची शिक्षा है। इस पढ़ाई द्वारा ही मनुष्य से देवता बन सकते हैं। अनेक जन्मों के विकर्मों का नाश कर सकते हैं। व्यर्थ से बचकर समर्थ बन सकते हैं। बाबा, अब तो मुझे अभी और आज से ही केवल केवल श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है और अपना नाता एक सर्वशक्तिवान से जोड़ना है। इसके लिए मुझे निरंतर अभ्यास करना है। बाबा, तो अब मेरा प्रॉमिस है, मैं अमृत वेला आज से ही प्रारंभ कर दूंगी, कर दूंगा। ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन अमृत वेला है। और अमृत वेले में बाबा के कुछ महावाक्य पढ़कर सुनकर ही बाबा के सामने मुझे बैठना है, बाबा से शक्तियां लेनी है। सर्वशक्तिवान बाबा की संतान मुझ आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। महसूस कीजिए, स्वयं बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि दे देकर शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्मा सत्य पिता की आज्ञाकारी संतान वो सत्य मात पिता मुझ आत्मा का भाग्य बना रहे हैं। भाग्य विधाता की संतान मैं आत्मा भाग्यवान आत्मा। बस अब तो मुझे यही करना है, भाग्य विधाता को अपना बनाकर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। यही मुझ आत्मा का धंधा है, यही लक्ष्य है, यही मेरा जीवन है। भाग्य विधाता बाबा का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। मुझ आत्मा का निश्चय पक्का है, भाग्य विधाता स्वयं मुझ आत्मा का भाग्य श्रेष्ठ बना रहे। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सच्चा बाबा ही मेरा साथी है, मैं बाबा का। महसूस कीजिए और बाबा के साथ अपनी मन बुद्धि की डोर को पक्का बांध लीजिए। बाबा बाबा बाबा। आप सब बाबा के बच्चे सच्चे पक्के मजबूत शक्तिशाली बच्चे बने, सदा आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर
बनेंगे। रहता और खुशी बांटता।
निर्मोही के तौर करेंगे,
निर्मोही के तौर करेंगे जब जब हम खुद पर गौर करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे फेस